आज हम चलते हैं एक और पैगंबर की जिंदगी में झांकने के लिए। आज मेरा रुख दमिश्क के करीबी इलाके की तरफ है। एक आलीशान घर के एक खूबसूरत कमरे में कोई बुजुर्ग सर झुकाए मुसल्ले पर बैठे जिक्र में मसरूफ हैं। कमरे में कुछ तारीकी है और हर तरफ एक अजीब खामोशी है। वो इतने महव हैं जिक्र इलाही में कि जैसे इनको कुछ पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। उनकी जुबान से मुसलसल अल्लाह ताला का शुक्र अदा हो रहा है। वो इसी हालत में है के कमरे में एक औरत दाखिल हुई। वो जाके इनके करीब बैठ गई है और फूट फूट के रोने लगी। बुजुर्ग ने अपना सर उठाया, मेरी चीख निकल गई। उनके चेहरे पे ये क्या हुआ है? सारा चेहरा सुर्ख था और ऐसे लग रहा था कोई बीमारी है जिसने इनको आ लिया। उन्होंने औरत के कंधे पे हाथ रख के जैसे तसल्ली के अंदाज में थपकना शुरू कर दिया। औरत बोली, आज मुझे छोटा बहुत याद आ रहा है। मेरी तो गोद सूनी हो गई। बुजुर्ग की जुबान से फौरन निकला, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो बोली, सब कुछ ही तो खत्म हो गया। अब तो मेरे और आपके सिवा कोई भी नहीं। बुजुर्ग बड़े इत्मीनान से बोले, जिस अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया था वो वापस ले ले तो बंदा शिकायत नहीं कर सकता। औरत बोली, आप तो बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं, कब से सह रहे हैं, मगर मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। बुजुर्ग ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और हाथ उठा के बोले, ए तमाम पालने वालों के पालने वाले, तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया। मुझे माल दिया, मुझे औलाद दी। उस वक्त मेरा दिल उनमें मशगूल रहता था, अब तूने ये मुझसे ले ली है तो मेरा दिल इन सारी फिक्रों से पाक कर दिया। अब मेरे दिल में और तुझ में कोई भी हायल नहीं रहा। अगर मेरा दुश्मन इबलीस तेरी इस मेहरबानी को जान लेता तो मुझसे बहुत हसद करता। अभी वो ये कह रहे थे कि दरवाजे पे दस्तक हुई। उन्होंने बड़ी मुलायमत से कहा, आ जाओ अंदर। एक स्याह फाम गुलाम अंदर दाखिल हुआ और बोला, हजूर, जिन जिन के लिए आपने राशन पहुंचाने का हुक्म दिया था उन सब तक पहुंचा दिया, मगर वो कुछ कहते कहते चुप हो गया। हजूर ने बड़ी तश्वीश भरे अंदाज में पूछा, क्या बताओ? बोला, मेरे आका, कभी कोई रात ऐसी नहीं गुजरी कि आपको किसी का पता चलता कि वो भूखा है और आप उसको खाना खिलाने का इंतजाम ना करते हो। आप तो खुद खाते भी नहीं थे जब तक उसको ना खिलाया जाता। आका, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास एक से ज्यादा कपड़े हों और आपने किसी जरूरतमंद को ना दिया हो। बुजुर्ग बोले, तुम क्या कहना चाहते हो? वो बोला आप के साथ ये हाल हो गया कि घर में खाने को कुछ भी बाकी नहीं बचा, सब कुछ ही खत्म हो चुका है। फरमाया पहले खाने वाले ज्यादा थे तो रिस्क भी बहुत था, अब हम दो ही तो रह गए। जब बच्चे थे तो बहुत कुछ था, उनके हिस्से का भी अल्लाह ताला ने दिया हुआ था, अब वो नहीं रहे तो उनका रिस्क भी उठ गया। गुलाम फिर सर झुकाए बोला लेकिन अब तो आप दोनों के लिए भी कुछ बाकी नहीं बचा, एक रोटी का आटा बस रह गया। पहले नौकरों की रेल पेल थी, मगर जब से सब खत्म हुआ है अब तो कोई नौकर भी बाकी नहीं है जो मेरी कोई मदद करते। बुजुर्ग ने सर उठा के कुछ देर गुलाम को देखा, फिर फरमाया अच्छा जाओ तुम आजाद हो, तुम्हें रख के भी मैं क्या करूंगा, बीबी खुद खाना बना लेंगी। गुलाम चंद कदम आगे बढ़ के उनके पास आकर बैठा और बोला आका मैं कहना तो नहीं चाहता मगर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ, कभी कोई सोच भी ना सकता था कि इतनी दौलत की रेल पेल, इतना बड़ा काम कारोबार, इतने सारे बीवी बच्चे सब आन की आन में ऐसे खत्म हो जाएंगे। बुजुर्ग ने गुलाम की बात काटी और फरमाया ठीक है तुम जाओ। वो खामोशी से खड़ा हुआ और दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद बीबी आकर बुजुर्ग के पास बैठ गई और बोली सही तो कहता है, हमारे पास कितने ऊंट थे, कितनी गायें थी, भेड़ बकरियां घोड़े हर किस्म के जानवर तो थे, और हर जोड़े की देखभाल के लिए आपने खादिम भी मुकर्रर किए हुए थे, उन खादिमों के बीवी बच्चे भी हमारे पास रहते थे। फिर ये क्या हो गया कि सब कुछ खत्म हो गया और माल का नुकसान तो इंसान सह ही लेता है, हमारे तो बच्चे भी चले गए, एक भी ना बचा। ना वो खेत रहे ना तिजारत बाकी रही, तिजारत तो घाटे में पड़ गई। क्या आप सोचते नहीं किसकी नजर लग गई हमें, वरना आप जैसे नेक सीरत परहेजगार मिसकीनों को खाना खिलाने वाले, बेवाओं की मदद करने वाले, मेहमान नवाज, शुक्रगुजार, हर वक्त अल्लाह ताला को याद करने वाले, उनके साथ ऐसा क्यों होना था। बुजुर्ग सारी बात सुन के फिर फरमाने लगे देखो लोग कहते थे अय्यूब अल्लाह ताला का शुक्र इसलिए अदा करता है कि इसके पास नेमते बहुत हैं, अब मेरे रब ने मुझसे नेमते छीन ली ताकि पता चले कि मैं अब भी शुक्रगुजार हूं। हमें इस हाल में भी शुक्र अदा करना चाहिए। औरत बोली लेकिन आप सोचते नहीं हैं कि हमारे सब माल औलाद सब कहाँ चले गए, वो जो ऊंट थे एक दिन आग का भगोला आया सारे जल गए, उनके साथ उनके खादिम भी जल गए। और जोर कहने लगे हाँ तो क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने दिया था उसी ने ले लिया, मैं तो हमेशा अपने जान और माल को फना होने वाला समझता हूं, मैं माँ के पेट से नंगा ही पैदा हुआ था, और नंगा ही मुझे मट्टी में चले जाना है, और नंगा ही उठाया जाऊंगा। और जब अल्लाह ताला कोई चीज अमानतन दे दे तब बंदे को इतराना नहीं चाहिए, और जब वो अमानत वापस ले ले तो उसको जजा फजा नहीं करनी चाहिए। मैं अभी तक इन बुजुर्ग की बातें सुन के, जो अल्लाह के प्यारे नबी अय्यूब है, हैरत ज़दा रह गई। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि किसी इंसान के अंदर इतना सब्र हो सकता है, इतना हौसला। बुजुर्ग कहने लगे, मुझे याद है वो दिन जब मेरे पास एक एक करके खबर आ रही थी। पहले जानवर मर गए, फिर खेती के ऊपर आंधी चली और खेत सारे के सारे तबाह हो गए, औरत बोली, माल पे तो इंसान को सबर आ जाता है, पर औलाद पे कैसे सबर करूं, ये सहना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। वो महल जो हमारी औलाद के ऊपर गिर गया था, कैसे हो गया ये सब। ये कहते हुए औरत की आंखों में आंसू थे, वो आंसुओं को पोंछती जा रही थी और बोलती जा रही थी। उनकी लाशों के भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वो देखे नहीं जाते थे। पैगंबर अय्यूब ने हाथ बुलंद किया और फरमाया, बस करो बस करो। उनकी आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे। फरमाया, उस दिन जब मुझे ये इत्तला मिली थी तो मेरे मुंह से निकला था, काश मैं पैदा ही ना हुआ होता। फिर मैं इतना पछताया अपनी इस बात पर कि मैंने ये अल्फाज क्यों कहे। जानती भी हो मैंने किस कदर तौबा इस्तिग़फ़ार की इस पे। मुझे अफसोस है आज भी कि क्यों मैंने अपने सर पे खाक की मट्टी मुट्ठी डाली थी। औरत बोली, ये आप ही का सब्र और हौसला है कि आपने ये सब बर्दाश्त कर लिया और फिर भी कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। आपकी सेहत इस कदर बिगड़ गई है तब भी आप शुक्रगुजार हैं। बुजुर्ग ने अपनी चादर संभालने के लिए जब उठाई तो मैंने देखा उनके सारे जिस्म पर चेचक नुमा दाने थे, उनकी खाल गल रही थी, पीप से भरे हुए छाले, किस कदर तकलीफ दे होंगे जो देखे भी नहीं जा रहे थे। औरत बोली, आप कैसे इस सब तकलीफ बर्दाश्त किए जा रहे हैं। बुजुर्ग ने एक लंबी सांस खींची और बोले, मैं ये अल्लाह ताला की देन है, उसने मुझे आजमाया, मैं इस पर सब्र करता हूं। आज तो मोहल्ले वाले भी आए थे, कह रहे थे आपको यहां से निकलना होगा, ये बीमारी आगे से आगे फैलने वाली है। वो डरते थे कि कहीं ये बीमारी उनको या उनके बच्चों को लग गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लिहाजा अब हमें यहां से जाना होगा, इस वर्ष का इलाज तो कोई है नहीं। उन लोगों ने कहा है कि आप बस्ती से बाहर जाकर रहें। इसके लिए उन्होंने वहां पर एक झोपड़ी भी बना दी है। बीबी रोते रोते बोली, मगर क्या किसी हकीम के पास कोई इलाज नहीं आपके लिए। हजूर ने ठंडी आह भरी और फरमाया, हकीम क्या कर सकता है जब तक वो शिफा ना दे जिसके हाथ में शिफा है। बीबी बोली, फिर अब क्या करना है? फरमाया, करना क्या है, इससे पहले कि वो लोग हमें उठा के बाहर फेंके हम खुद ही यहां से चले जाएं। मैं हैरान रह गई इतने आलीशान घर को छोड़ के, इतने मालो दौलत की और नेमतों के अंदर रहने के बाद अब एक इंसान एक झोपड़ी में जाके रहे, ये किस कदर मुश्किल है। बीबी ये सुनकर फूट फूट के रोने लगी। कहने लगी, अच्छा मैं आपके दोस्तों को बुलाती हूँ कि वो हमारी कुछ मदद करें। बुजुर्ग आहिस्ता से बोले, वो भी उनके साथ ही आए थे ये कहने के लिए कि जल्द से जल्द यहां से निकल जाए वरना वो उठाकर फेंकेंगे तो अच्छा नहीं होगा। बीबी ने ये सुना तो हैरत से बोली, मगर वो तो आप पर ईमान लाने वाले थे, अगर आप अल्लाह के नबी ना भी होते तो भी दोस्ती समझ लेते, मुद्दतों तक तो वो आपके साथ रहे थे। मैं समझ गई, इनको सबने ही छोड़ दिया था, औलाद तो वैसे ही खत्म हो गई, माल सब तबाहो बर्बाद हो गया और दोस्त अहबाब ने भी बेवफाई कर दी। इनका दुख देखकर मुझे सख्त रंज हुआ, ऐसा दुख तो पहाड़ पे भी डाल दिया जाता तो शायद वो भी ना उठा सकता। इनका दुख कोई एक नहीं था, हर तरफ से आजमाइशों ने इनको घेर लिया था और सबसे बड़ी आजमाइश तो सेहत में और औलाद में होना है, और ये दोनों आजमाइशों से गुजर रहे थे। इनकी बीमारी ने इनके जिस्म को इतना लागर कर दिया था कि इनमें उठने की भी हिम्मत नहीं थी। ये बीमारी ऐसी थी जो जिस्म के अंदर नहीं थी। बाज बीमारियां तो वो होती हैं कि मरीज तकलीफ में होता है, कराहता है, मगर किसी को बीमारी नजर नहीं आती। मगर ये एक और आजमाइश थी कि ये ऐसी बीमारी है जो लोगों को दूर भगा दे, नजर आए, लोग घिन खाएं, नफरत से दौड़ जाएं, कोई करीब भी आना ना चाहे, गोश पोश खाल सब झड़ जाए और इंसान की हालत ऐसी हो जाए कि लोग देख के डरें। इनकी बीमारी ने इनका कोई हिस्सा नहीं छोड़ा था सिवाय जुबान के, जिससे ये हर बात अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे थे, और ऐसी हालत में भी अल्लाह ताला का जिक्र करना कितनी बड़ी बात थी। बुजुर्ग ने बीवी से फरमाया, मुझे उठाओ और ले चलो, अब यहां से हमारा दाना पानी उठ गया है। बीबी उठी और उनको सहारा देकर अपने कंधों पर उनका बाजू रखा और दोनों आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकल गए। यहां तक का आज का हमारा एपिसोड मुकम्मल हुआ, कल देखेंगे कि आगे क्या होता है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।